بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھا ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت پیش کریں گے کہ یا اللہ، یہ میری وہ قوم تھی جنہوں نے آپ کے پاک قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ چھوڑنا کس سے متعلق ہے؟ ائمہ تفسیر کے اقوال کے متعلق کے مطابق یہ کفار سے متعلق بھی ہے، اور وہ مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پابندی سے اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، یہ ان سے متعلق بھی. یہ آیت کا خلاصہ ہے. حدیث جو پیش کی ہے مسلم شریف کی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو سر بلند کرتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں. اس کتاب کی عجیب تاثیر ہے، اس کا دونوں کام ہے، یہ عزت بھی عطا کرتی ہے اور ذلت کے گڑھے میں بھی ڈال دیتی ہے. عزت کسے عطا کرتی ہے؟ جو بھی قوم اس کتاب پر ایمان لائے گی اور اس کے حقوق ادا کرے گی، اللہ تعالیٰ نے عرش سے فیصلہ فرما دیا ہے، اس قوم کو سر بلند رکھا جائے گا، عزت و عظمت کے بلند مینار پر اسے پہنچا دیا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر کسی قوم نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا، اس پر ایمان بھی نہیں، اس کی تلاوت بھی نہیں، اس کے احکام پر عمل بھی نہیں، تو اس قوم کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، بیماری آئیں گی، بلائیں آئیں گی، ٹینشن آئے گا، ڈپریشن آئے گا، آپس کے اختلاف ہوں گے، انتشار ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت. ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہا لوگوں کو چاہیے ڈریں بچیں, اللہ رسول کے حکم کی مخالفت سے بچیں, ورنہ وہ کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دی جائے. آج میرے بھائیوں امت پریشان ہے, حالات کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی, ہر صبح پریشانیوں کے دلدل میں پھنستی, لیکن اللہ کے پاک قرآن کو کھولنے کو بھی تیار ہے. تو اگر آپ نے قرآن کی طرف سے بے توجہی کی تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا, آپ پر حالات آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی. اور اگر آپ نے اس کتاب کو کھول لیا, اس پر ایمان لائے, اس کو پڑھا, تلاوت کی, تو میرے بھائیوں پھر کیا کہنا ہے. اس پورے قرآن کی عظمت کو کوئی کیا بیان کرے. اس پاک قرآن کی بعض صورتیں صرف ایسی ہیں, بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس کا اہتمام کرے تو اسی سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. میں جلدی جلدی کچھ آیتیں کچھ صورتوں کے پہلے فضائل بتاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ سے درخواست کروں گا میرے بھائیوں اللہ کے پاک قرآن سے عشق اور محبت کا تعلق پیدا کر. آج ہم پریشان ہیں, ہمارا حال کیسا ہے, جیسے کوئی آدمی سب کے سامنے بھکاری ہو, بھیک مانگتا پھر رہا ہو کہ صاحب پیسے دے دو, کھانے کو نہیں, کپڑا پہننے کو نہیں, مکان بنانے کو نہیں, پیسے دے دو. ایک آدمی نے دیکھا تو اس کے دونوں جیب بھرے ہوئے تھے, سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے. اس نے توجہ دلائی کہ بھائی تو کیوں بھکاری ہے, کیوں مانگتا پھر رہا ہے؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں. کہا کچھ پتا ہے تیرے دونوں جیب میں کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا تمہارے دونوں جیب میں سونا ہے. سونا کہا یہ کیا چیز ہوتی؟ کہا سونا تو ایسی قیمتی چیز ہوتی ہے جہاں تو چاہے اس کو کیش کرا لے تو اتنے روپے مل جائیں گے, مکان بھی بن جائے گا, کھانا بھی مل جائے گا, اور کپڑے کا بھی انتظام ہو جائے. ایسی میرے بھائیو آج ہم قرآن پاک کے ہوتے ہوئے پریشان ہیں, ہر لائن سے پریشان ہیں. کیوں؟ قرآن ہوتے ہوئے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. ایک مسلمان ہے جسے قرآن پاک کی 10 سورتیں بھی زبانی یاد نہیں, پر 100 گانے آج اس کو زبانی یاد. فلم میں ناچنے گانے والے ہیروں کی پوری ہسٹری معلوم ہے, پر اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسے کچھ پتہ نہیں. آج امت اپنی منزل سے بہت دور جا چکی. قرآن نے جن چیزوں سے روکا تھا, منع کیا تھا, باقاعدہ اس میں گھستے جا رہے ہیں. قرآن نے سود سے منع کیا تھا, آج مسلمانوں میں سود عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش سے فیصلہ فرما دیا, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹا دیں گے. سود لے کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, ترقی نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا, درہم و ربا یاکلہ رجل وہو یعلم اشد من 36 زنیا. یہ حدیث کے الفاظ کا, سود کے ایک درہم کو سود جانتے ہوئے استعمال کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر. کوئی مسلمان سود لیتا ہے یہ عملاً قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کہ قرآن نے ہمیں جس چیز سے روکا تھا وہ اس میں گھستا چلا جا رہا ہے. پھر وہ اللہ کی زمین پر اب چین سے نہیں رہ سکتا, اس پر حالات آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, اس کے کاروبار پر آسمانی پکڑ آئے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک فرماتے ہیں, ما ظہر الربا والزنا فی قرية الا اذن اللہ بإهلاكها, جس کسی بستی میں زنا اور سود والا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت. تو زنا اور سود کے گناہ میں مبتلا ہونا یہ گویا عملاً قرآن کی مخالفت کرنا ہے. قرآن کی مخالفت کر کے آپ عزت سے جی نہیں سکتے. آپ اپنے گھر میں ہوں گے, گھر والوں میں ہوں گے, وہاں بھی آپ ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں. یہ قرآن ایسی عجیب و غریب کتاب ہے, مانو تو نوازے جاؤ گے, نہیں مانو گے تو پٹو گے, ذلیل ہو گے, رسوا ہو گے, حالات کے دلدل میں پھنسا جاؤ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, قرآن کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل ہیں, رسوا. سب ارادہ کرو کہ آج سے ہم اللہ کے پاک قرآن کو سینے سے لگائیں گے, چمٹائیں گے, اس کی تلاوت بھی کریں گے, اس پر عمل بھی کریں گے, اور قرآنی مکاتب کو جگہ جگہ پھیلائیں گے, جگہ جگہ عام کریں گے. قرآن کی تعلیم کو سارے عالم میں عام کرنے کی فکریں کرو. میرے بھائیو جو لوگ اللہ کے پاک قرآن کو پھیلاتے ہیں, قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں, اللہ کے ان کا بہت اونچا مقام, بہت بلند مرتبہ. हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब दीन को फैलाना चाहा तो उन पर यह राज खुला कि जब तक कुरान की तालीम को मकातिब कुरानिया को हम आम नहीं करेंगे दीन आम नहीं हो सकता। हजरत ने उस जमाने में गुरबत के जमाने में मेवात के इलाके में जगह जगह कुरान के मकातिब कायम फरमाए। बाज मरतबा मकतब के मुदर्रिस को देने के लिए तनख्वाह नहीं रहती, पैसे ही नहीं रहते, तो हजरत के घर की मस्तूरात के जेवर बेचे गए। उनके घर की जो मस्तूरात के जीवर बिके तो जमीन के कोई प्लाट को खरीदने के लिए नहीं, कोई बिल्डिंग को खरीदने के लिए नहीं, वो कुरान के मकतब के मुदर्रिस की तनख्वाह को देने के लिए। उनके दिल में इतनी अजमत थी कुरान। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा मोहतरमा थी वो खुद पूरे कुरान पाक की हाफिजा थी, रोजाना एक मंजिल तिलावत किया करती थी, रोजाना 5000 दुरूद शरीफ पढ़ती थी और बहुत सारे अजकार के उनके मामूलात। जब ऐसी मां की गोद में कोई बच्चा परवरिश पाता है तो अपने वक्त का मौलाना इलियास बनता है और दुनिया में दीन का डंका बजा के जाता है। मेरे भाइयों, आज उम्मत पर जो हालात हैं, ये कुरान पाक को हर तरह से छोड़ दिया, न तिलावत के लिए मौका है, न उसके अहकाम पर अमल करते हैं, न उसकी तालीम को आम करने की फिक्र करते। हर आदमी इरादा करो अपनी जात से मरने से पहले कम अज कम 10 कुरान के मकातिब खोल के तब मरेंगे। कुरान का मकतब खोलना क्या मतलब है? आपने अपनी आखिरत के होलसेल की दुकान खोल दी। अब उस मकतब से कयामत तक जितने कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वास्ता दरवास्ता, वो सारा सवाब आपके अकाउंट में जाएगा। इसलिए सब इरादा करो हम खुद कुरान को भी पढ़ेंगे और कुरान की तालीम को आम करने की फिक्र करें। करोगे सब लोग? अब सुनो, मैं जल्दी जल्दी कुछ हदीसें सुनाता हूं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस सुनो। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला रावी हदीस है, कहते हैं बई नमा जिब्रील कायद इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिया नकीज़म मिन फौकी। कहा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह के रसूल के पास बैठे थे, अचानक उन्होंने अपने ऊपर से एक अजीब गरीब आवाज सुनी। फरफा रासहु, इस आवाज को सुनने के साथ ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया, फिर इरशाद फरमाया हाजा बाब मिन समाई फुतिहल यौम लम युफ्ता कत्त इल्ल यौम। कहा यह आसमान का वो दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला है, आज ही खुला। सुम्मा नज़ल मलकुन, फिर आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ, फिर फरमाया हाज़ा मलकुन नज़ल इलल अर्दी लम यंज़िल क़त्तु इल्ल यौम। कहा यह वो फरिश्ता है आज आसमान से उतरा है, आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया था। मेरे भाइयों, कुरान की अजमत को पहचानो, कुरान क्या चीज है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की ख्वाब में ज़ियारत की, कहा या अल्लाह हम आपका मुकर्रब खुसूसी वीआईपी चहीता और लाडला बंदा बनना चाहते, क्या काम करें, कौन सा अमल इख्तियार करें? अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया बस मेरे कलाम से ताल्लुक पैदा कर लो, मेरे कलाम को पढ़ो। उन्होंने यह भी पूछा कि आपका यह खुसूसी कुर्ब जो मिलेगा यह कुरान को समझकर पढ़ने पर मिलेगा या बिला समझे ही? फरमाया बिला समझे पढ़ने पर भी मिल जाएगी, जाओ। इतना बड़ा कलाम। मेरे भाइयों, यह ऐसी अजमत वाली किताब है, इसका देखना भी इबादत, इसका छूना भी इबादत, इसका पढ़ना भी इबादत, और इस पर आप अमल कर लें तो सारी दुनिया में आपका परचम लहरा जाए। ऐसी अजीब और गरीब किताब अल्लाह ताला ने हमें आपको दी। आसमान से फरिश्ता आ रहा है, बाकायदा पैगाम लेकर आ रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे ये वो दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, ये वो फरिश्ता है आज से पहले कभी नहीं उतरा। फसल्लमा, फिर वो फरिश्ता हुजूर के सामने आकर उसने सलाम किया। जानते हो क्या कहा? बताओ। आसमान से फरिश्ता वो बशारत लेकर आ, वो हमारे पास है लेकिन हमें पता नहीं वो क्या चीज है, और अगर पता है तो हम अमल नहीं करते, फायदा नहीं। सब इरादा करो कि वो जो बशारत मिली है वो बता दिया जाए तो उस पर अमल करोगे? सब इरादा करते हो? हाय हाय, वो फरिश्ता सामने आया, अबशिर बिन उरैन या रसूलल्लाह, मैं दो नूरों की बशारत लेकर आया, दो नूरों की खुशखबरी लेकर आया हूं, और वो दो नूर ऐसे हैं अबशिर बिन उरैनी उती तहुमा लम युतहुमा नबीयुन कबलक। या रसूलल्लाह, मैं आपको ऐसे दो नूर की बशारत देने आया हूं, आपसे पहले किसी नबी को वो नूर की बशारत नहीं मिली। पता है वो दो नूर क्या है? फरमाया एक नूर का नाम सूरह फातिहा है और दूसरे नूर का नाम सूरह बकरा की आखिर की दो आयत। सूरह फातिहा को पढ़ो, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर उलमा ने इतनी इतनी जिल्दों में लिखी है। सूरह फातिहा क्या है? एक हदीस में आता है फातिहातुल किताब शिफा मिन कुल्लि दा, सूरह फातिहा का पढ़ना हर बीमारी के लिए शिफा है। बड़े बड़े आमिलीन से जाके पूछो, बड़े बड़े सीरियस केस में, लाइलाज केस में, डॉक्टरों के रिटन केस में वो आमिल लोग जानते हो कहते हैं कि फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़। ये अल्लाह की किताब में हर तरह की शिफा है, जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा है मेरे भाइयों, रूहानी बीमारियों से। कितने कैंसर के मरीज खाली कुरान पाक के आयतें सुन सुन के अच्छे हो गए, मगर यकीन और एतिकाद और तसलसल ये शर्त। मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के दादा थे मौलाना इस्माइल साहब, जो मौलाना इलियास साहब के वालिद थे। मरकज निजामुद्दीन में उस जमाने में एक बड़ी घंटे वाली घड़ी थी, वो बिगड़ गई, बीमार हो गई। बिगड़ गई यानी बीमार हो गई, अपना काम करना छोड़ दिया उसने, बंद हो गई। तो दुनिया चूंकि दारुल असबाब है, इसलिए हजरत ने पहले जाहिरी सबब को इख्तियार करते हुए घड़ी साज को बुलाया, घड़ी बनाने वाले को यानी उसके डॉक्टर को बुलाया। कहा भाई देख ये बंद हो गई है, बिगड़ गई है, जरा तो इसे ठीक कर दे, चला दे। तो उसने नखरे किए, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, बाद में कुछ कहा उसने इस तरह की बात। हजरत ने कहा अच्छा जा तू चला जा। वो चला गया। मेरे भाइयों हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया अपनी आप बीती में लिखा है, जाके देख लो, हवाला दे रहा हूं। जैसे ही वो चला गया वहीं बच्चे हजरत से कुछ पढ़ रहे थे, हजरत ने कहा बच्चों सूरह फातिहा 7 मरतबा तुम भी पढ़ के घड़ी पर दम करो और मैं भी दम करता हूं। बस हजरत ने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के दम किया, बच्चों ने दम किया, खुली आंखों लोगों ने देखा वो घड़ी जो बंद थी वो चलने लगी, चलने लगी। कोई जाहिरी हाथ नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या समझते हो कुरान को मेरे भाई? कुरान की अजमत पैदा करो। कहा अबशिर बिन नूरैन या रसूलल्लाह, दो नूरों की बशारत लेकर आया हूं, उसमें से एक नूर का नाम क्या है? बोलो सूरह फातिहा। बोलो पढ़ोगे सूरह फातिहा? हदीस पाक का मजमून है कुरान पाक की, कुरान पाक के एक हर्फ को अगर आप नमाज में पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे एक हर्फ पर 100 नेकी मिले। कितनी नेकी बोलो? नमाज में पढ़ेंगे और बैठकर पढ़ेंगे एक हर्फ पर 50 नेकी मिले। नमाज के बाहर पढ़ेंगे वजू के साथ पढ़ेंगे एक हर्फ पर 25 नेकी। नमाज के बाहर पढ़ेंगे बिला वजू पढ़ेंगे तो भी एक हरफ पर 10 नेकी। याद रखो कुरान को बिला वजू छूना मना है, पढ़ना मना नहीं। आप घर से आ रहे थे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते आ जाते, लाखों नेकी अब तक मिल जाती। अब यहां से घर जाएंगे तो कितने ऐसे पागल की तरह यहां देखते जाएंगे, और ये नहीं कि जबान पर कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो पढ़ते हुए जाए। मेरे भाई अपनी एक एक सांस को वसूल करो। अकाबिर औलिया अल्लाह अपनी एक सांस को भी जाहिर नहीं होने देते जी। तो दूसरा, पहले तो सूरह फातिहा आप समझ गए, अब दूसरे पर आओ। दूसरी क्या? दूसरा नूर क्या बताया? दूसरे नूर का नाम क्या बोलो? सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। जानते हो आज कितने मुसलमान सूरह बकरा जानते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ी? कितनी? बाज रिवायात में है कि एक मरतबा 4 रकात में अल्लाह के रसूल ने 6.25 पारे पढ़े, 4 रकात, उसमें एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ी। कोई जिंदगी का एक दिन तो ऐसा गुनाओ गुजारो कि सूरह बकरा पूरी एक रकात में पढ़ के दिखाओ। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात एक आयत तिलावत करते करते हुजूर रोते रहे और गुजार दे, एक आयत की तिलावत सारी रात, कुरान की तिलावत और रोना, कुरान की तिलावत और रोना, इस तरह से अल्लाह के दरबार में। सोचो आज हमारी जिंदगी 60 साल की हुई, कोई हमारी जिंदगी की एक रात भी ऐसी गुजरे? तो दूसरा जो नूर है वो क्या फरमाया? फातिहातुल किताब व सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। कहां से? آمن رسول. پھر آگے فرمایا لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته, یہ حدیث کے الفاظ. یا رسول اللہ یہ دونوں نور ایسے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو نواز دیا جائے گا, عطا کیا جائے. کیا عطا کیا جائے گا؟ اب یہ دونوں صورتوں میں کیا ہے, شروع میں اللہ پاک کی تعریف ہے, اس کے بعد دعا ہے. مطلب آپ اللہ کی جو تعریف کریں گے اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا, اور جو دعا ہے اس میں جو دعا آپ مانگیں گے وہ دعا یقیناً قبول کی جائے. سب ارادہ کرو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کو زبانی یاد کریں گے. حدیث میں ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخریب, کا وہ سینہ جس میں قرآن کی آیتیں محفوظ نہیں ہیں, جو سینے میں قرآن زبانی کچھ یاد نہیں ہے, وہ ویران گھر کی طرح. آج دو دو سو گانے زبانی یاد ہیں اور قرآن کی دس سورتیں بھی تمہیں زبانی یاد نہیں. گانے کو چھوڑو, قرآن سے محبت تعلق پیدا کرو. بخاری کی ایک روایت یاد آئی, عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ ہاتین الآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتاہ, یہ حدیث کے الفاظ, رواہ البخاری. کہا جو بھی شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخر کی صرف دو آیتوں کی تلاوت کر لے گا تو بس یہ دو آیتوں کی تلاوت ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. کاہے کے لیے کافی ہوں گی؟ کیا مطلب؟ محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں مطلب یہ کہ اس رات کے ہر شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. بعض محدثین کہتے ہیں کہ رات میں اس کا کوئی ورد چھوٹ گیا, کوئی معمول چھوٹ گیا, نہیں کر سکا, اور اس کی جگہ خالی یہ دو آیتوں کی تلاوت کر لی تو بس یہی دو آیتیں بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں. ایک حدیث میں ان دونوں آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ کسی گھر میں صرف تین رات تک یہ دو آیتیں پڑھی جائیں تو شیطان قریب نہیں جا سکتا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان دونوں آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ, کیونکہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہیں اور یہ اللہ کے قرب خاص کا ذریعہ بھی ہیں, اور ان میں دعا کا بھی مضمون ہے. عجیب و غریب دو آیتیں. سب ارادہ کرتے ہو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت یاد کر لو گے, اور کم از کم رات کو ہر مسلمان ضرور پڑھ لے. دیکھو جب تک تمہیں زبانی یاد نہیں ہوتا دیکھ کے پڑھ لو, اگر آپ نے پڑھنے کا بھی معمول بنا لیا تو پڑھتے 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 ایک دن وہ آئے گا آپ کو آٹومیٹک زبانی یاد ہو جائے. یہ تو میں نے صرف سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں. اب سنو, ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے تبوک میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک میں تشریف فرمائے, وہ صحابی کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو رہا. کہاں ہو رہا بولو؟ انتقال ان کا مدینہ میں ہو رہا, حضور تبوک کے علاقے میں تشریف فرمائے. حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ فلا صحابی کا انتقال ہو گیا ہے, اگر آپ ان کی جنازہ پڑھنا چاہیں جنازے کی نماز تو میں پیک پر ماروں گا, درمیان کے سب حجابات ہٹ جائیں گے اور آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے. حضور نے کہا ٹھیک ہے ضرور پڑھیں. جب اللہ کے رسول ان کی جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ ان کی جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے فرشتے آئے, بہت فرشتے. بعض روایات کے مطابق کتنے فرشتے؟ 140,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے. اب یہ فرشتوں کی شرکت اور اس کی کثرت دیکھ کر اللہ کے رسول حیران رہ گئے. حضور نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا, جبریل میرے اس صحابی کا اتنا بڑا درجہ, اتنے فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے, کیا بات تھی, کیا عمل تھا, کیا خاص وجہ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو وجہ بتائی آپ کو میں بتا دوں, آپ بھی عمل کریں گے. کہا لحبہ ایاہا قل ہو اللہ احد, کہ ان کا ایک خاص عمل یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے آپ قل ہو اللہ کہتے ہیں, سورہ اخلاص کہتے ہیں, کہ اس سورہ اخلاص سے قل ہو اللہ سے ان کو خاص محبت تھی, خاص تعلق تھا, آتے ہوئے جاتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے بس اس کی تلاوت کرتے تھے. اس ادا پر اللہ کو اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا ہے کہ آج ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کتنے فرشتے آئے بولو؟ 140,000. یہ پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن کی بعض بعض سورتوں کا یہ حال ہے میرے بھائیو. بخاری کی ایک روایت یاد آئی, حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی, اس زمانے میں رات میں قرآن پڑھنا تہجد پڑھنا یہ صحابہ کا عام معمول تھا. آج کیسا امت کا عام معمول بتاؤں؟ आज उम्मत का आम मामूल ये है कि सब काम काज करके जब फारिग हुए, फ्री हुए, बेडरूम में गए और जेब से मोबाइल निकाला और उसकी मस्तियों में लग गए, कोई 3 बजे तक, कोई 4 बजे तक, कोई सुबह। आज उम्मत का ये आम मामूल, बहुत कम लोग इससे बचे हैं, अक्सर का आज हाल ही हो। उसके अपोजिट देखो सहाबा का मुआशरा क्या था कि आम तौर से रात में कुरान पढ़ना एक सहाबा का आम मामूल था, फिर उसमें कोई कम था कोई ज्यादा था। तो हजरत उसैद बिन हुजैर एक जलील उल कद्र सहाबी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो अपने घर में नमाज के अंदर क्या पढ़ रहे थे, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे घर में मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, मैं तिलावत कर रहा था तो अचानक मेरा घोड़ा भिदक गया, उछलने कूदने लगा। कहते मैं रुक गया, मैं रुक गया तो वो घोड़ा भी रुक गया। कहते फिर मैंने तिलावत शुरू की, फिर वो घोड़ा उछलने कूदने लगा, फिर मैं रुक गया, फिर उसका उछलना कूदना ऐसे 3 मर्तबा हुआ। कहते करीब में मेरा यहया बच्चा यहया लेटा हुआ था, मुझे डर यह हुआ कि कहीं घोड़ा उछल कूद रहा है, कहीं पैरों से रौंद डाले मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जख्मी हो जाए, उस डर से फिर मैंने तिलावत बंद कर दी। सुबह को जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े को बताया तो हुज़ूर ने कहा रे उस सैयद पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते। कहा या रसूलुल्लाह मेरा बच्चा था करीब में, मुझे डर ये हुआ कहीं उसको वो घोड़ा रौंद न डाले। कहा वो असल में जब तुम कुरान की सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे उसको सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते आ गए थे। अब यहां पर ठहर के मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनो, एक हदीस में फरमाया मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला हफ्फतहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। 4 बशारतें हैं जो भी अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करेगा। आज हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम है, आज हमारे ज्यादातर घर लानत हाउस बन गए। क्या बन गए बोलो? पहले हमारे घर रहमत हाउस थे, रहमतें नाजिल होती थी अल्लाह की, क्यों? रहमत वाले आमाल होते थे, घर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था, घर में कुरान पाक की तिलावत होती थी, घर में बुजुर्गों के किस्से सुनाए जाते थे। तो इन सब आमाल की वजह से अल्लाह की लिखा है कि नेक लोगों के तज़किरे के वक्त ही अल्लाह की रहमत उतरनी शुरू हो जाती। आज ज्यादातर हमारे घरों में गाने हो रहे हैं, बाजे हो रहे हैं, बेशर्मी हो रही है, बेहयाई हो रही है, उसकी वजह से गुनाह कर करके दिल सख्त हो गए, मोहब्बतें निकल गई, फिर आपस में इख्तलाफ बढ़ा, इंतशार बढ़ा। मेरे भाइयों, अपने घर को अगर आप रहमत हाउस बनाना चाहते हो फिर से अपने घर में नमाज को जिंदा करो, अल्लाह के पाक कुरान की तिलावत को जिंदा करो, अल्लाह के जिक्र को जिंदा करो। इस हदीस में 4 बशारतें दी हैं, जो भी अपने घर में इकट्ठा होकर अल्लाह का पाक कुरान पढ़ेंगे तो फरमाया आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे। आपके पास कोई नंबर है आप डायल करें फरिश्ता बुला सकते हैं? नहीं। ये अमल मैं आपको जो बता रहा हूं आप कीजिए, आसमान से फरिश्ते उतर आएंगे। हदीस में कि फरिश्ते आ जाएंगे घेर लेंगे और अल्लाह की स्पेशल खुसूसी रहमत आप पर नाजिल होने लगेगी और अल्लाह ताला आपका तज़किरा करेंगे वहां फरिश्तों की मजलिस। बताइए आपका तज़किरा अल्लाह की मजलिस में फरिश्तों की मजलिस में हो जाए कितनी बड़ी साथ। उसके लिए क्या करना? कुरान पाक। मैं कहता हूं पूरा कुरान तुम्हें नहीं आता, कुल हुवल्लाह तो आता है उसी को पढ़ो, सूरह फातिहा तो आती उसी को पढ़ो, तुम्हें जो भी सूरत याद है कुरान पाक की तिलावत की नीयत से पढ़ो। हदीस में हुजूर फरमाते हैं इकरउल कुरान फइन्नहु याती यौमल कियामा शफीअन लिअस्हाबिही, का कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करे। और ऐसा पावरफुल सिफारिश ही है, एक हदीस में फरमाया अल कुरान शाफ़िउ मुशफ़ा व माहिलु मुसद्दक़, कुरान ऐसा पावरफुल सिफारिश ही है अल्लाह ने उसकी सिफारिश को भी कबूल किया है और ऐसा झगड़ालू है कि उसके झगड़े को भी अल्लाह ने कबूल। क्या मतलब? अगर उसने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, ये वो हैं जिन्हें कन्नड़ सीखने का मौका था, इंग्लिश सीखने का मौका था, अल्लाह के पाक कलाम सीखने का इनके पास वक्त ही नहीं था। अगर उसने आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो क्या होगा मेरे भाई? सब इरादा करो कि आज से अल्लाह का पाक कुरान सीखेंगे, पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे और उस पर अमल करें। करोगे तो उनको जो इतना बड़ा दर्जा मिला सहाबी को, किस अमल की वजह से? कुल अल्लाह की सूरत से उनको मोहब्बत थी, आते हुए जाते हुए क्या करते थे? कुल अल्लाह की सूरत। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो 10 मरतबा, खाली 10 मरतबा कुलवल्ला की सूरत पढ़ लेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल बना देंगे। और अगर 20 मरतबा पढ़ लेगा तो 2 महल बनेंगे, 30 मरतबा पढ़ेगा तो 3 महल बनेंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह फिर हम पढ़े महल हम तो बनवा लेंगे। तो फरमाया, हाँ हाँ, अल्लाह के भी खजाने में कुछ कमी नहीं, आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे इतने महल बनते जाएंगे। बाद रिवायात में है कि अगर कोई आदमी बीमारी की हालत में कुलवल्ला शरीफ पढ़ता रहा और उसी हालत में इंतकाल कर गया तो कब्र के अजाब से बच जाएगा। मेरे भाइयों, हर आदमी को मरना है, कब्र में जाना है। हर आदमी चाहता है कि कब्र में हमारा कोई मददगार मिल जावे, मोनी सो गम गुसार बन जावे, कोई हमारा सिफारिशी बन जावे। आप दिल से इरादा करें कि रोजाना अल्लाह के पाक कुरान को हम खोलेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक अजीब व गरीब वाकया सुनाने जा रहा हूं, बशारत वाला। इरादा करो, हर मुसलमान, मौलाना अबराउल अक्सा भरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कम अज कम 3 मिनट के लिए तो कुरान की तिलावत करो। 3 मिनट के लिए तुम खोलोगे, अल्लाह तुम्हें खींच लेंगे। एक नेकी करो, दूसरे नेकी की तौफीक हो जाती, दूसरी करो तीसरे की तौफीक हो जाती। एक साहब थे हमारे न्यू मुंबई में, कुरान की तिलावत नहीं करते थे। मैंने कहा, हजरत खाली आप अपने नफ्स को इस पर तैयार कर लीजिए कि हम 3 मिनट के लिए कुरान जरूर खोलेंगे। कहा, इतना तो कर सकते। मैंने कहा, करो साहब। वो उन्होंने करना शुरू किया, फिर कुछ दिन बाद मिले तो कारगुजारी से कहा, हजरत अब तो 3 मिनट क्या, मैं तो पौना पारा तिलावत कर लेते। इसलिए पहला काम यह है कि अल्लाह के पाक कुरान को खोलो। खोलोगे तो आगे की तौफीक होगी। पढ़ना आता है तो कुछ तो पढ़ोगे, नहीं तो एक आखिरी शक्ल मोहब्बत से कुरान को छुओगे, ये छूना भी इबादत। इस पर एक अजीब व गरीब वाकया आया, सुनो। एक बड़े मियां का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनको देखा गया बाद में उनकी कब्र को, कि पूरी कब्र गुलाब के फूलों से मुअत्तर है, गुलो गुलजार हो गई। पूछा गया उनकी अहलिया से, आता ये बड़े मियाँ क्या काम? कहे, तो बड़े मियाँ जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कुरान भी नहीं पढ़ना नहीं आता था, और अलबत्ता नमाजी थे, और नमाज में सूरतें पढ़ने के लिए मैंने ही 2-4 सूरतें उनको जबानी याद करा दी थी, मगर पूरा कुरान पढ़ना नहीं जानते थे। कहा, मगर बताओ कोई खास अमल तो बताओ। उनकी कब्र को गुलो गुलजार पाया गया, गुलाब के फूल से भरी है, मुअत्तर है, क्या अमल? कहा, हाँ, एक अमल ये था कि रोजाना जब वो फजर की नमाज पढ़ के फारिग होते तो अल्लाह का पाक कुरान खोल के बैठते, और पढ़ना तो जानते नहीं थे लेकिन हर सतर पर उंगली फिराते और कहते, अल्लाह ये आपका पाक कुरान सच है बरहक है, आपका पाक कुरान है सच है बरहक है। बस हर सतर पर ऐसी उंगली फिरा फिरा के थोड़ी देर के बाद बंद करके रख देते। तो बताया गया, बस इस अमल पर अल्लाह को इतना प्यार आ गया, ये कुरान से इतना भी जो ताल्लुक था उस पर इतना प्यार आया कि आज मरने के बाद उनकी कब्र को गुलो गुलजार बना दिया। तो मैं कहता हूं, जो अजमत और मोहब्बत से कुरान को ऐसा छूता था उसको इतना इनाम मिला है, जो खुद कुरान को पढ़ेगा उसे कितना नवाजा जाए। मेरे भाई, ये सब लोग इरादा करो, जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो जल्दी से सीखो, और जो पढ़ना जानते खूब कुरान पाक की तिलावत करो। बस ये आखिरी वाक्य सुना के मैं बात खत्म कर रहा हूं। सुनो, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक्य को नकल किया है, उसमें रिवायत नकल की है कि जब इंतकाल हो जाता है तो घर वाले तो मैयत की तजहीद और तकफीन में लगे रहते हैं, लेकिन उसके सिरहाने एक शख्स होता है जो नहायत हसीन और जमील और खूबसूरत शक्ल में मौजूद होता है। जब घर वाले उसको कफन पहनाते हैं तो उसके सीने और कफन के दरमियान में हायल हो जाता है। फिर उसको घर वाले जनाजा पढ़ के कब्र में डाल देते हैं। जब कब्र में डाल देते हैं तो मुनकर नकीर सवाल के लिए आते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक नहायत हसीन और जमील शख्स है, वो इस मैयत के साथ वो भी मौजूद है। मुनकर नकीर उसको सवाल करने के लिए तन्हाई में लेना चाहते हैं तो ये जो हसीन और जमील शख्स है ये आड़े आ जाता है। कहता, ना, मैं इसको तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप खुदा की तरफ से सवाल जवाब के पाबंद हैं, आप उतना कर सकते हैं, बाकी मैं इसको तन्हा नहीं छोड़ सकता, हरगिज नहीं छोड़ सकता। फिर मैयत की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, पहले सब इरादा करो, कुरान खोलोगे रोजाना, कुरान की तिलावत करोगे। फिर मैयत की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैयत कहता, मैं नहीं पहचानता आपको। कहा, मैं वही कुरान हूं जिसे दुनिया में तुम कभी बुलंद आवाज से पढ़ते थे और कभी आहिस्ता पढ़ते थे, आज उसी पढ़ने के बदले में अल्लाह ने मुझे इस शक्ल में भेजा है। और वो कुरान फिर तसल्ली देता है, कहता, तुम घबराओ मत, ये मुनकर नकीर का सवाल का जवाब देने के बाद तुमको कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं। फिर आगे लिखा है कि वो मलय आला यानी ऊपर जाता है और उसके लिए रेशम के बिस्तर वगैरह का भी इंतजाम करता है। ये कौन होता है? कुरान होता है। तो ये इनाम किसको मिलेगा? जो इस दुनिया में कुरान पर ईमान रखते हुए कुरान से खुसूसी इसको मोहब्बत का ताल्लुक रखे। सब लोग इरादा करो अल्लाह के पाक कुरान से इसको मोहब्बत का ताल्लुक रखेंगे, उसको पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, अमल करेंगे और सारे आलम में उसको आम करने की फिक्र करें। करोगे सब लोग? बस मजमून खत्म हो गया। अब आखिर में हमारा जो मामूल है, कोई एक दुआ, मुख्तसर सी दुआ हम बताते हैं। एक ऐसी दुआ हम बताने जा रहे हैं कि वफात से पहले, इंतकाल से पहले कोई आदमी सच्चे दिल से सिर्फ 3 मरतबा इन कलिमात को कह ले, वो जन्नत में चला जाए। कितना मुख्तसर अमल, कितना मुख्तसर खजाना मैं देने जा रहा हूं, तवज्जो से सुनो। 3 जुमले हैं, हदीस में साबित है कि वफात से पहले सच्चे दिल से 3 मरतबा खोली 3 कलिमात को कह लेगा और मर गया तो जन्नत मिलेगी। क्या क्या? ला, पढ़ो सब लोग मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, تبارك الذي بيده الملك وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير। बस इतने अल्फाज हैं हदीस में। लिखा है कि अगर मरने से पहले सच्चे दिल से कोई 3 मरतबा सिर्फ कह ले और उसका इंतकाल हो जाए तो जन्नत। मगर मेरे भाइयों, इन आमाल की तौफीक छिन जाती है आखिर वक्त में, आदमी ये सब नहीं कर पाता। किसकी वजह से? गुनाह की नहुसत की वजह से। अब आप मोबाइल के रसिया हैं, मोबाइल के आदि हैं, गाने बाजे को आप छोड़ नहीं पाते, तो ये गुनाहों की नहुसत से आदमी बहुत सारी नेकियों से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए गुनाह भी छोड़ो, तौबा करो, अल्लाह के पाक कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बी।